नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 1 मई 2020 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए जिंदगियों की रक्षा, पीड़ाओं पर मरहम और भविष्य की बेहतरी के लिए योजना। कोविड-19 संकट काल में यूएन की 3 प्राथमिकताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति में सर्वसहमति, कोविड-19 अब भी है एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी। स्कूली आहार बंद होने से 37 करोड़ बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है संकट। तालाबंदी हटाते समय कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा का रखे ध्यान। महामारी के दंश से करोड़ों कामगारों की आजीविका को खतरा। और जलवायु संकट पर पार पाने के लिए साहसिक और दूरगामी नेतृत्व की दरकार। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक के बाद कहा गया है कि कोविड-19 के कारण अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य इमरजेंसी कायम है। इस बैठक पर बात थोड़ी देर में, पहले चर्चा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जीतने का संकल्प दोहराया है। गुरुवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विकराल चुनौती से निपटने के लिए पूरी यूएन प्रणाली जिंदगियों को बचाने, भुखमरी की रोकथाम करने, लोगों की पीड़ा कम करने और आर्थिक और सामाजिक पुनर्बहाली का खाका तैयार करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज एकदम स्पष्ट है और हम एकजुटता, एकता और आशा की पुकार लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
महासचिव ने कहा कि अनेक विकसित देशों के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन हैं, लेकिन विकासशील देशों को व्यापक सहारे की आवश्यकता होगी। कोविड-19 के कारण बदहाल हालात और बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होने पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के साथ पर्याप्त एकजुटता नहीं दिखाई जा रही है, जो चिंता का सबब है।
I am particularly worried about the lack of sufficient solidarity with developing countries, both in equipping them to respond to the COVID-19 pandemic, which risks spreading like wildfire, and to address the dramatic economic and social impacts.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि मैं खासतौर से विकासशील देशों के साथ एकजुटता के अभाव को लेकर चिंतित हूं, उन्हें महामारी का मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने की कमी को लेकर, जिसके कारण महामारी जंगल की आग की तरह फैल सकती है और महामारी के व्यापक आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का हल निकालने में कमी को लेकर भी। जैसे जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र जिंदगियां बचाने, अकाल से बचने, तकलीफें कम करने व पुनर्बहाली की योजना के साथ पूरी तरह सक्रिय है। हमारी आवाज स्पष्ट रही है, जिसमें एकजुटता, एकता और उम्मीद की पुकार शामिल रही है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। यूएन प्रमुख ने कहा कि इस साझा दुश्मन से लड़ाई के लिए वैश्विक युद्ध विराम की अपील की गई है। साथ ही $2 अरब की वैश्विक मानवीय राहत योजना शुरू हुई है, जिसके जरिए सबसे निर्बलों, शरणार्थियों व घरेलू विस्थापितों की मदद की जाएगी। इसके लिए दानदाताओं ने प्रस्तावित योजना की आधी धनराशि का संकल्प ले लिया है। महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली द्वारा किए जा रहे प्रयासों में 3 मुख्य आयाम रेखांकित किए: वैश्विक युद्ध विराम को हासिल करना, विकट आर्थिक हालात में फंसे लोगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना और हालात में बेहतरी के लिए योजना पर तत्काल काम शुरू करना। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की अपील को व्यापक समर्थन मिला है। 114 देशों की सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों, धार्मिक नेताओं और सभी क्षेत्रों के 200 से ज्यादा नागरिक समाज समूहों ने इसका समर्थन किया है और इनमें 16 हथियारबंद संगठन भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने माना कि अविश्वास अब भी कायम है और युद्ध विराम को प्रभावी ढंग से लागू कर पाने की दिशा में आगे बढ़ना कठिन है। इस दिशा में प्रगति के लिए यूएन के विशेष प्रतिनिधि और दूत अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि मंशा को वास्तविकता के धरातल पर उतारा जा सके।
जिनेवा में शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात समिति की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 से उपजे हालात पर चर्चा हुई। इस बैठक में सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सहमति जताई कि कोविड-19 अब भी एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी है और अभी इस आकलन में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने कमेटी की उस सलाह को मान लिया है जिसमें वायरस के पशु स्रोत का पता लगाने की बात कही गई है।
We accept the committee's advice that WHO works to identify the animal source of the virus.
हम कमेटी की सलाह स्वीकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और सहयोगपूर्ण मिशनों के जरिए यूएन स्वास्थ्य एजेंसी को खाद्य एवं कृषि संगठन और पशु स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करना होगा और वायरस के पशु स्रोत का पता लगाना होगा। 3 महीने पहले 30 जनवरी को आपात समिति की दूसरी बैठक के बाद कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का सबसे ऊंचे स्तर वाला अलार्म है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 30 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। विश्वव्यापी महामारी के कारण दुनिया के अनेक देशों में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका है। तालाबंदी के कारण स्कूल भी बंद हैं, जिससे करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं, खासकर वो बच्चे जो अपने भोजन के लिए स्कूलों में मिलने वाले आहार पर निर्भर थे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने सरकारों से ऐसे 37 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखे जाने की अपील की है। साथ ही नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जो बताते हैं कि तालाबंदी से प्रभावित 1 अरब से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूलों को फिर किस तरह खोला जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
तालाबंदी व सख्त पाबंदियों के कारण मौजूदा समय में 73% से ज्यादा छात्रों यानी 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा बच्चों व युवाओं की पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ा है। यूएन एजेंसियों ने सचेत किया है कि व्यापक स्तर पर शिक्षा केंद्रों के बंद होने से बच्चों की शिक्षा व उनके कल्याण के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा हुआ है, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले उन बच्चों के लिए जो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व पोषण के लिए स्कूलों में मिलने वाली सहायता पर निर्भर हैं। ताजा दिशा निर्देश संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने विश्व बैंक के साथ मिलकर तैयार किए हैं। ये संगठन वैश्विक शिक्षा गठबंधन में शामिल है जो शिक्षा के लिए अवसरों को प्रोत्साहन देने के वास्ते मार्च 2020 में स्थापित किया गया था। इन गाइडलाइंस में राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन के लिए ऐसे व्यावहारिक कदमों का उल्लेख है जिनके जरिए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा कि जो बच्चे स्कूलों से वंचित रह जाते हैं उन्हें बढ़ती असमानता, खराब स्वास्थ्य, हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जितना लंबे समय तक स्कूलों से बाहर रहते हैं उनके वापस आने की संभावना उतनी ही कम होती है। अगर हमने सुरक्षित माहौल में स्कूल फिर से खोलने को प्राथमिकता नहीं बनाया तो शिक्षा में प्रगति की दिशा को भारी झटका लगने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इससे पहले सरकारों से ऐसे 37 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखे जाने की अपील की थी जिसके अभाव में उनके भविष्य पर हानिकारक असर होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीजली ने बताया कि करोड़ों बच्चों के लिए स्कूलों में मिलने वाला आहार ही उनका दिन में एकमात्र भोजन है। इसके बिना वे भूखे रह जाएंगे, उनके बीमार पड़ने, स्कूलों से बाहर हो जाने और उनके गरीबी से निकल पाने का एक अच्छा मौका खो जाने का जोखिम है।
विश्वव्यापी महामारी पर काबू पाने के इरादे से लागू की गई तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियों की एक बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और उसके साझेदार संगठनों के नए अनुमानों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं में आए व्यवधान के कारण आने वाले महीनों में अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख से ज्यादा अतिरिक्त मामले सामने आ सकते हैं। साथ ही महिला जननांग विकृति और बाल विवाह के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज होने की आशंका है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
ये आंकड़े यूएन एजेंसी ने अपने साझेदार संगठनों एवेनीर हेल्थ, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार किए हैं। अनुमान दर्शाते हैं कि अगर महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रयास नहीं किए गए तो उनके लिए मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निम्न और मध्य आय वाले देशों में तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियों के कारण 6 महीने की अवधि में लगभग 4,70,00,000 महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इससे महिलाओं द्वारा अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख और लैंगिक हिंसा के 3 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त मामले सामने आ सकते हैं। आशंका जताई गई है कि विश्वव्यापी महामारी के कारण महिला जननांग विकृति, महिला खतना और बाल विवाह जैसी समस्याओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की रफ्तार पर असर पड़ेगा। इस वजह से अगले एक दशक में महिला खतना के 20 लाख ज्यादा मामलों और बाल विवाह के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अतिरिक्त मामलों का अनुमान लगाया गया है। दुनिया में अनेक स्थानों पर परिवार नियोजन सेवाओं पर व्यापक असर पड़ा है। बहुत से स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं या फिर सीमित स्तर पर ही उपलब्ध हैं। जो देश कोविड-19 से व्यापक स्तर पर प्रभावित हैं, वहां स्वास्थ्य कर्मियों के पास या तो समय का अभाव है या फिर जरूरी निजी बचाव उपकरण नहीं है ताकि वो परामर्श प्रदान कर सकें। बहुत से स्थानों पर महिलाएं खुद स्वास्थ्य केंद्रों तक जाने से कतरा रही हैं क्योंकि उन्हें कोविड-19 से संक्रमित होने का भय है। आपूर्ति श्रृंखला में भी व्यवधान आने के कारण बहुत सी जगहों पर गर्भ निरोधकों की उपलब्धता पर असर पड़ा है। अगले 6 महीनों में सबसे कम आय वाले देशों में इनका भंडार खत्म हो जाने की आशंका जताई गई है।
कोविड-19 के कारण कई देशों में लागू की गई तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियां हटाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कदम उठाए जाने से वायरस के फिर से उभरने की आशंका भी गहरा रही है। इस हफ्ते मंगलवार को कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य का विश्व दिवस था और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इन चिंताओं के मद्देनजर सरकारों से कार्यस्थलों की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध करने का आग्रह किया है। इससे कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने के खतरे को कम किया जा सकेगा। समय रहते आवश्यक उपाय अपनाकर कार्यस्थलों पर संक्रमण की दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव के खतरे की रोकथाम संभव है। इस सिलसिले में कर्मचारियों की जरूरतों के अनुरूप बदलाव करना अहम होगा। खासकर अग्रिम मोर्चे पर डटे कर्मचारियों के लिए एहतियाती उपाय ध्यान में रखने होंगे। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, नर्सें, डॉक्टर, आपात स्थिति के लिए नियुक्त कर्मचारी और खुदरा भोजन व्यापार व साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही उन श्रमिकों की मदद की बात भी कही गई है जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इस बीच श्रम संगठन ने ही अपने ताजा अपडेट में कहा है कि महामारी का अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में करोड़ों श्रमिकों और उद्यमों पर तबाही लाने वाला असर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से कामकाजी घंटों में भारी गिरावट जारी है और ये गिरावट पहले के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो दर्शाते हैं कि इस महामारी का असर गहरा रहा है। इस साल की दूसरी तिमाही में कामकाजी घंटों में गिरावट 30 करोड़ से ज्यादा पूर्णकालिक रोजगारों के समान हो सकती है। इससे पहले यह अनुमान 19 करोड़ से ज्यादा पूर्णकालिक कर्मचारियों के रोजगार खो जाने के समान था। इसकी वजह तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियों का जारी रहना बताया गया है। सख्त पाबंदियों से एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे 1.60 अरब श्रमिकों की रोजी रोटी कमाने पर असर पड़ा है। हालात में सुधार के लिए रोजगार पर केंद्रित रणनीति को अहम बताया गया है। व्यापक सामाजिक संरक्षण प्रणालियां, आर्थिक स्फूर्ति प्रदान करने वाले राहत पैकेज और कर्ज माफी के उपाय से पुनर्बहाली प्रक्रिया को असरदार बनाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 और मानवता के अस्तित्व पर मंडराता जलवायु संकट, इन दोनों व्यापक चुनौतियों से निपटने का एकमात्र विश्वसनीय रास्ता बहुपक्षवाद पर आधारित निडर, दूरगामी और सहयोगपूर्ण नेतृत्व में निहित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ये बात कही। यूएन प्रमुख ने जिंदगियों पर मंडराते खतरों, पंगु हो रहे व्यवसायों और क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि में सचेत किया है कि मौजूदा हालात में टिकाऊ विकास लक्ष्यों के लिए भी जोखिम पैदा हो गया है। महबूब खान की रिपोर्ट।
यूएन महासचिव ने बर्लिन में मंगलवार को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद को संबोधित करते हुए सहन क्षमता मजबूत बनाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक काल से पहले के समय की तुलना में तापमान में मौजूदा बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती, अनुकूल प्रयासों व वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करने के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ाने की पैरवी की है। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के उपायों के तहत सभी देशों को वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करनी होगी। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, लेकिन उसका सबसे अधिक असर उन्हीं पर दिखाई दे रहा है। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से उबरने व हालात बहाल किए जाने की प्रक्रिया को एक अवसर के रूप में देखा जाना होगा, ताकि दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा सके जहां जलवायु परिवर्तन से निपटना, पर्यावरण की रक्षा करना, जैव विविधता को संरक्षित करना और दीर्घकाल के लिए मानवता का स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव हो। कम कार्बन आधारित और जलवायु सहनशील आर्थिक वृद्धि के जरिए हम एक ऐसी दुनिया सृजित कर सकते हैं जो स्वच्छ, हरित, सुरक्षित, न्यायोजित और सभी के लिए समृद्ध हो। इस क्रम में उन्होंने जलवायु संबंधी 6 उपाय पेश किए हैं, जिन्हें अपनाकर देश हालात बहाली की दिशा में बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तरह ग्रीन हाउस गैसें भी सीमाओं को नहीं पहचानती और अलग थलग रहना एक ऐसा जाल है जिसमें किसी भी देश को अपने दम पर सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से ही कार्रवाई के लिए एक साझा फ्रेमवर्क है, टिकाऊ विकास का 2030 एजेंडा और जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता। उन्होंने कहा कि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर कुल वैश्विक उत्सर्जन में 80% मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।